Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
दिल्ली में एक दफा मातेश्वरी आई तो एक बहन है जिनके पति उनसे बहुत झगड़ा करते थे। उन्होंने आर्य समाज में जाके कईयों से बावेला किया कि इस संस्था को बंद कराओ, ये घर पिटाते हैं, हमें पति पत्नी का नाता समाप्त करके बहन भाई बनाते हैं, जैसे लोग आक्षेप करते थे। बहुत ही उग्रवादी व्यक्ति था, उग्रवादी शब्द तो अभी निकला है एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन वो तब से ही पहले से ही था, अखबार वालों को मालूम नहीं था कि उग्रवाद की हिस्ट्री कहां से शुरू हुई, वो उनको नहीं पता। तो वो व्यक्ति वहां पहुंचा और राजौरी गार्डन सेंटर पर, तो मैंने आपको बताया जहां झगड़ा होता था वहां मैं तो होता ही था, नारद मुनि की तरह से, तो वहां भी पहुंचा हुआ था। तो मैं था, रुक्मणी बहन जो आजकल राजौरी गार्डन में है वो थी, और वो व्यक्ति वहां पहुंचा, मैं 5-10 मिनट बाद पहुंचा, हम उसका कुछ इंतजाम करने गए हुए थे। वो पहुंचा और मैंने माधेश्वरी से बात करनी है, वो कहाँ है उनसे मुझे मिलाओ। बड़े जोश में था, एक दो बल्ब तोड़ दिए और जो कुछ भी कुर्सी वर्सी पड़ी थी पटक दी उठा के, बहुत ही गुस्से में था। खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जो उसके सामने आया उसको तोड़ फोड़ करता क्यों, एक्सट्रीमिस्ट तो था। तो वो अंदर घुस के अपना जो भी काम करता था करता रहा। फिर मामा को उसने ढूंढने की कोशिश की, मामा उसको दिखाई नहीं दी, मिली नहीं। उसने सोचा है यहां जरूर, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो यहां है। ऊपर गया, ऊपर गया तो मामा एक कुर्सी में बैठी थी और चारपाई पड़ी हुई थी एक वहां सबसे ऊपर। रात का टाइम था, थोड़ी देर में मामा को विश्राम करना था। अचानक से जाके पहुंचा, मम्मा को किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ऐसे आया है, वो ऊधम मचा रहा है, ऊधम सिंह है, तो पहुंच गया वो। तो वो मम्मा ने कहा, मम्मा को उसका नाम भी बताया गया था, उसने पत्र भी लिखे थे मम्मा को, उसको कहा आओ गिरधारी बच्चे बैठो। तो वो उसने सोचा कि मुझे बैठना महान व्यक्तियों के सामने शोभा नहीं देता, वो पांव में बैठने लगा। देखिए इतना परिवर्तन तो उसमें पहले ही आ गया, नहीं नहीं ये चारपाई पड़ी है बैठो। तो जब मम्मा ने 2-3 दफा कहा वो बैठा, बैठ के बात कुछ नहीं और वापस आ गया, और अंत में यही जाकर बोला कि मैं नहीं समझता कि मम्मा कोई ऐसी शिक्षा देता है देती है, मेरी औरत ही बेवकूफ है। ये तो उसे ही समझाना पड़ेगा क्या था। ऐसे ही उस व्यक्ति ने उस वक्त तो ये समझ लिया, बाद में कुछ दिन के बाद फिर काम आत क्रोधों पर जाए थे, जिसको बाबा कहते हैं भिकारी व्यक्ति था, थोड़े समय के बाद फिर उसको क्रोध आया। तो बाबा आए हुए थे देरी में, वो हमेशा कोशिश करता मुझे बाबा से मिलूं किसी तरह से। हम लोगों ने पास बनवाए हुए थे, यहाँ लटकाते थे कि कोई बाहर के व्यक्ति ना आए, और जब बसें जाती थी तो वो बस में बैठने की कोशिश करता था कि इनमें छिप के मैं भी चला जाऊं बाबा से मिलूं। तो बहुत मना किया लोगों ने, एक दफा कहता है बस के नीचे आ जाऊंगा लेकिन जाऊंगा जरूर, आज मैं मिल के ही रहूंगा। उन्होंने देखा ये हमारा भी टाइम खराब कर रहा है, सारी बस रोक रखी है इसने, वहां जाके इसको उतार के काबू करेंगे, अभी बस तो चलने दो। तो पहुंच गया वो वहां, पहुंचने के बाद उसको रोका गया कि आप यहां तक, अगर लास्ट लाइन जो थी वहां बैठाएं उसको। वो उसको वहां बिठाया तो सही, वो जो ब्रिजेश भाई ने बिठाया बिठा के थोड़ा इधर उधर हुआ, वो आगे बैठ जाके बैठ गया, आगे बैठ के और कहता है कि कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, इन लोगों ने मुझे आज तक बाबा से मिलने नहीं दिया। अगर बाबा से मिलने दिया होता तो मैं इतना जो शरारत करता रहा कभी ना करता। इस बाबा को देखकर कोई सोचेगा, कोई ये सोचेगा कि गलत इस संस्था है, इतना उनके मुख पर तेज है, इस उम्र में इतना सीधी कमर से वो बैठे हैं सारा टाइम, और इतनी उनकी वाणी में ओज है, मिठास है, मन को लगती है उनकी बात, आंखों में कितने उनकी चमक है। और इस व्यक्ति के बारे में कोई गलत सोच सकता है? और ये ब्रह्मा कुमार बेवकूफ हैं जो बाबा से मिलने ही नहीं देते लोगों को, मना करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये तपोभूमि भी है, कर्तव्य भूमि भी है और स्मरणीय स्थल है। यहाँ जो टावर ऑफ पीस है, शांति स्तंभ, उस पर लिखा हुआ है आबू सर्व महान तीर्थ है। तो ऐसे स्थान पर आप रहते हैं तो उस स्थान की इतनी जिसकी महिमा है, गायन है जिसका, उसमें रहने वालों की कितनी जिम्मेवारी हो, आप ये सोचिए। एक तो हमारी भी जरा सोचिए कि जिन्होंने ऐसी महान विभूतियों को निहारा, उनके साथ रहे, उनसे मिलने जुलने बातचीत करने का मौका मिला कई वर्षों तक, और आज वो जमाना बदल गया, कुछ और बातें चल पड़ी, उनको कैसा लगता होगा? ऐसा लगता है कि कौन सी दीवार रास्ते में है जिसको तोड़कर हम भी उस पार पहुंचे। अब हमारा यहाँ रहना, हमारा काम पूरा हुआ, हमें चलना चाहिए जैसे हमें बुला रहे हो। दूसरी तरफ हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जिस जगह पर रहते हैं, जब उसका इतना महत्व है, तो उसके विषय में आप उतना ही उत्तरदायित्व, उतना ही हर्ष, उतना ही गर्व ये महसूस करते हैं कि आपके कितने सौभाग्य हैं, क्या विशेष कोई पुण्य आपने किया है जो आपको ऐसे स्थान पर रहने का मौका मिला है। उसका एक नशा, एक गर्व, और साथ साथ ये महसूस करना कि वो आप कितने सौभाग्यशाली हैं। जैसे जो आयरन फाइल्स हैं, लोहचून है, उसको आयरन फिल्स हैं, उसको मैग्नेट खींच लेता है अगर वो जंग ना लगा हुआ हो। आपको जो मैग्नेट ने खींच लिया है, यहाँ अपने आसपास आप आ गए, लोग आते हैं जाते हैं, हम भी आते हैं और जाते हैं, आप तो यहाँ रहते ही रहते हैं, तो कितना आपका बड़ा सौभाग्य है वो महसूस करते हैं। या बीच बीच में कभी वो कम हो जाता है। और तीसरा ये कि ये जो ऐसा स्मरणीय स्थल है, जो सबसे महान तीर्थ है, जहाँ एक एक कदम पर बाबा के चिन्ह स्मरण के बने हुए हैं, यहाँ खेलते, यहाँ बैठते, यहाँ भोजन करते, यहाँ विश्राम करते, यहाँ बात करते, भंडारे में जाके रोज देखते, हम तो जब जाते हैं ऐसा महसूस होता है बाबा आ रहे हैं, क्योंकि हम साथ साथ जाते थे उनके, इस समय ये कर रहे हैं, इस समय ये कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के बारे में उसकी दिनचर्या की चर्चा होती है, उसके चरित्रों का वर्णन आता है, ऐसे ही ऐसे स्थान पर आप बैठे हैं तो उनके क्या ड्यूटी होती है, क्या कर्तव्य होता है? जब गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिनाया जा रहा था और उनसे मुसलमान लोग कह रहे थे कि देखो ईंटें यहां तक आ चुकी हैं, चिनाई हो चुकी है, बाकी इतना हिस्सा रह गया, अभी थोड़े से दिखाई दे रहे हो, अभी भी अल्लाहु अकबर कह दो, कलमा पढ़ दो, तुम्हें हम रियासतों के नवाब बना देंगे, नहीं तो मर जाओगे, 15 मिनट का खेल और है। तब भी वो क्या कहते थे, जो बोले सो निहाल। अपने ही मत पर, अपने ही जो धर्म है, धारणा है, जो विश्वास है, जो आस्था है, उस पर वो जमे हुए थे, उसकी रक्षा वो कर रहे थे। जीवन पर तो एक दिन ये समाप्त होना ही है। तो ऐसी पवित्र भूमि, ऐसी नई सृष्टि की रचना की भूमि, जहां स्वयं शिव बाबा अवतरित होते हैं, दुनिया को इस चीज का नहीं पता, जो परात पर परे से भी परे ब्रह्मलोक के परलोक के रहने वाले परम धाम से शिव बाबा आते हैं, हम दुनिया के बच्चों से मिलते हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जिनको लोग ढूंढते रहे, जंगल की खाक छानते रहे, मिले नहीं, जहां पर वो आते हैं उसकी क्या विशेषता है, उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, उसकी पवित्रता की, उसकी शांति की, उसकी मर्यादा की, उस पृथ्वी की, उस घर की, उस भूमि की, उस आश्रम की, उस यादगार की, जो तीर्थ है उसकी, उसकी संभाल करने में हमारी कितनी जिम्मेवारी होती है। भगवान कौन सी रचना रच रहे हैं, क्या कर्तव्य भूमि है, क्या तपस्या सिखा रहे हैं, किस लिए ये स्मरणीय भूमि है, वो हमारे चरित्र से, हमारी एक्टिविटी से, हमारे व्यवहार से वो छलकनी चाहिए। केवल कह देने से तो ऐसा नहीं होता। तो क्या हम सब ऐसे हैं कि जिसको देखकर लोग कहें कि ये भगवान की रचना है? बाइबल में कहा गया है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने जो दुनिया रची, नई दुनिया बनाई, उसमें जो मनुष्य थे, नर नारी थे, वो उसके समान थे, वैसे ही उनमें गुण थे जैसे परमात्मा में गुण है। जैसे हम आमतौर से कहते भी हैं कि रचिता के गुण रचना में आते ही हैं, हम उसकी रचना है, और ऐसी रचना जो यहां बैठे हैं, तो उसमें ऐसे गुण हों जो स्वयं बाबा के गुण हों। जिस तरह से बाबा मीठी वाणी से बोलते, प्यार से बोलते, और हमारा सद्व्यवहार आपस में कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, जब उसकी कर्तव्य भूमि थी, उनका जीवन कितना सादा था, उनके जीवन में क्या कोई लौकिक, कोई प्रकृति की, किसी पदार्थ की कोई इच्छा थी, कोई धन की, मान की, शान की इच्छा थी? आज तो हम इतने फूल सबको पहनाते हैं। बाबा ने तो मना किया था कि तुम ही फूल हो, मुझे तुम फूल, चेतन फूल चाहिए, मानवीय फूल, इस पर खर्च मत करो, इसके जो पैसे हैं सेवा में लगाओ, लोगों की सेवा में लगाओ। ठीक है, समय आता है कुछ सेवा के लिए, कोई कार्य समय और मौके को देखकर किए भी जाते हैं, लेकिन आज जो हमारी स्थिति है, क्या हम ज्यादा चढ़क भड़क में, सज धज में, शोभा के पीछे ज्यादा, चीज कम खर्च बाला नशीन, जिसको बाबा कहते हैं बाला नशीन तो होनी चाहिए, ऊंची क्वालिटी तो होनी चाहिए, लेकिन कम खर्च की भी होनी चाहिए। क्या हमारा ये भाव रहता है कि हमारे ऊपर व्यक्तिगत जो खर्च हो वो कम से कम, दान दिया हुआ पैसा है, घर गृहस्थ में जो लोग रहते हैं वो अपनी मुश्किलात में से जीवन जैसे कैसे व्यतीत करके, किस प्रकार से सेवा और शिव बाबा को सामने रख के यहाँ वो अर्पित करते हैं, और कितने गुना उनको मिलता है होकर, तो वो सेवा अर्थ लगे मिनिमम जो बेयर नीड्स हैं, कम से कम जो हमारी जरूरियात हैं, उसको पूरा करने के लिए हम अपने ऊपर लगाएं, उसके अलावा हमें नहीं चाहिए। कोई हमें गुलाब जामुन खिलाता है, हमने खाया, कहता है एक और ले लो, क्यों ले लें भाई, चलो उसका तो प्यार है, वो प्यार की अभिव्यक्ति करने के लिए कहता है एक और ले लो, स्नेह है उसका, और स्नेह के लिए ये शिष्टाचार भी है। कोई मेहमान है, कोई व्यक्ति जो आपसे स्नेही है, वो कहता है, ऑफर करता है, ऐसा तो नहीं कहेगा दूसरा नहीं खाना, बैन तो नहीं लगा हुआ, लेकिन हमें दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज ऑफर करता है, क्यों खाएं, वाई टू वेस्ट, अभी एक टोली खाई, अभी दूसरी टोली, अभी तीसरी टोली, सुबह को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 20 टोली अगर हमने खाई, 21 जन्म सतयुग की और 20 टोली हमने खाई, सोचिए, तो ये क्या उसके साथ पैरेलल है, हमने उससे मेल मिलाना है इसका। तो हमको जितना भी मिनिमम सादगी का जो जीवन है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भोजन सर्वोत्तम है, अमृत के समान है, किसी भी सेंटर पर हम भोजन करते हैं, यहाँ भी भोजन करते हैं, तृप्त हो जाते हैं। ऐसा आनंद आता है, ऐसी संतुष्टि होती है कि बात मत पूछो। ऐसा भोजन जीवन भर में कहीं भी इस संसार में ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। बढ़िया से बढ़िया बनाने वाला भी ऐसा भोजन नहीं बना सकता। शिव बाबा की याद में रह के जो भोजन बनाया गया है, कमाल है उस भोजन की। मैं जब इंडोनेशिया में था, क्योंकि समय होता नहीं था, बहुत से देशों में चावल और दाल बना के मिला के खाता था, या चावल में ही आलू डाल देता था, वो खा लेता था। तो वहां पर चावल और दाल या चावल और मूंग बनाता था मैं। तो कुछ परिवार सुबह सुबह क्लास से पहले ही आ जाते थे और वो मैं खत्म नहीं कर पाया। वो मुझसे पूछे कि क्या आप बनाते हैं, तो मैंने बताया, कहते हैं थोड़ा सा हमें खिला सकते हैं। मैंने सोचा ये तो बीमार आदमी का खाना है, दाल और चावल, चलो इनको खिला दो, प्यार से कह रहे हैं, तो उनको खिला दिया। क्योंकि ना कोई उसमें मिर्च मसाले, ना कोई खट्टा, ना चटपड़ा, कुछ भी नहीं था, वो तो सिंपल थे। नमक जरूर था उसमें। अगर वो भी ना डालता तो शायद दूसरे दिन ना मांगते वो। तो उनको खिलाया, वो रोज ही आके बैठना शुरू कर दिया उन्होंने तो। मैंने कहा, भाई इसमें तुम्हें क्या मजा आता है, तुम्हारे घर में अच्छे से अच्छे खाना बनता है, तो इसमें तुम्हें दाल चावल खाने में क्या मजा आता है। कहते हैं, जी बात मत पूछो, जो इसमें स्वाद आता है। अगर आप बुरा ना मने, आपसे ये सेवा हमें लेनी तो नहीं चाहिए, आप इतना ज्ञान हमें देते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो हमारे लिए बना ही लिया करो। तो बाबा की याद में बनाया हुआ जो यज्ञ का भोजन है, वो भी हम कितने लकी हैं, बहुत लकी हैं। ऐसा भोजन कहीं भी कहीं भी कहीं भी चैलेंज है मेरा, नहीं मिल सकता। सर्वोत्तम भोजन, तृप्त करने वाला भोजन।